मुझे दो तीन बातें थी कि ये देखें भुट्टो साहब से तो बड़ा कोई लीडर पैदा ही नहीं हुआ, ये तो फालतू बातें हैं जो कंपैरिजन किया जाता है मुख्तलिफ लीडरों से कि वो भुट्टो के बराबर है। भुट्टो ने सारे इस्लाम आलम इस्लाम को इकट्ठा किया था
बिल्कुल जी, 1976 वो जो 74-76 में इस्लामिक जो समिट हुई थी और चार लोगों को मार्क कर लिया गया था, भुट्टो साहब थे, शाह फैसल थे, ईदी अमीन थे और कजाफी थे और यासर अरफात थे।
ठीक है जी, ये तो उसका बहुत बड़ा कारनामा था और उसने वैसे भी जो था मतलब बहुत सारे गरीबों के लिए तो उसने बहुत कुछ किया था।
उन्होंने सबसे ज्यादा मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को शऊर दिया था ब्लैक गोल्ड का,
नहीं उन्होंने गरीबों को जो था मिडल ईस्ट का रास्ता दिया था। आज जो पाकिस्तान के अंदर जो ये 25-26 मिलियन डॉलर आते हैं ना साल के, ये वहां से ही आते हैं, ये भुट्टो साहब की ही देन है। दूसरी बात, आपने ईरान की बात की, ईरान आप बताइए मुझे पिछले 40-35 साल के अंदर, खासतौर से जब से ये सद्दाम हुसैन की हुकूमत खत्म की गई, कितने लाख लोग जो है वहां पे मारे हैं ईरान ने, की प्रॉपर्टी हुई कितने लाख, कितने मिलियन के हिसाब से, और कितनी जगह उसने अमेरिका के साथ सपोर्ट करके जो है उनको मरवाया है और अभी तक मरवा रहे हैं। अभी उसके ऊपर मिसाइल आया तो उसने अब उसके ऊपर इसराइल पे हमला कर दिया, उसने कौन सा फलस्तीन के लिए किया है,
उसने कौन सा मैं इसी पे मैं स्टैंड लेती हूँ आप
और पाकिस्तान को जो है ये मतलब जो है कि हम हर वक्त जो है कि हम ईरान के नीचे लगे रहे, हम इंडिया के नीचे लगे रहे, हम अफगानिस्तान के नीचे लगे रहे, ये सब क्या है। कोई गरीब से गरीब मुल्क भी जो है वो अपने मुल्क को जो है नीचा नहीं समझता, सिवाय पाकिस्तान के, बस यही है आपसे कहना।
बहुत शुक्रिया भाई साहब। अभी जब आपने बात की ना तो देखिए आपने ये कहा कि ईरान जो है फलस्तीन के लिए नहीं किया, उन्होंने इसलिए किया है कि दमिश्क में उनकी एम्बेसी पे अटैक हुआ था। एक बात मैं आपको कहती हूँ, चाहे वो हौसी बागियों की सूरत में हो, टफ टाइम उन्होंने जरूर दिया और इसराइल का डायरेक्ट अगर प्रॉब्लम है तो उनको ईरान के साथ प्रॉब्लम। अब ये मैं और आप इज्यूम करते हैं, ये हम लोग इज्यूम कर रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका का साथ दिया, जितनी सैंक्शंस ईरान ने बर्दाश्त की है किसी ने भी नहीं बर्दाश्त की जहां तक मारा की बात है। और अगर मैं ओपनली कहती हूं कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान का सिस्टम इतना अच्छा हो जाए कि एनीबॉडी जो कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ना चले तो उसकी सजा बिल्कुल, अभी रिसेंटली उन्होंने तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है उन्होंने अपने 5 के 4 जनरल्स को कटहरे के बीच में उन्होंने सजा दी थी, शरिया लॉ के मुताबिक सजा दी थी। और ये सजाएं यहां पर भी हैं, आज आप देख लीजिएगा जूलियन असांज क्या किया, उसका क्या कसूर है कि उसने वो डॉक्यूमेंट जाहिर किए थे जिसमें अमेरिका की कॉन्स्पिरेसीज थी, जिसमें अमेरिका के मुतालिक थे, मगर वो बैठा हुआ सारी मैं उसकी जवानी से लेकर उसका बुढ़ापा आ गया उसको सजा मिल रही है उसकी। एडवर्ड स्नोडन की अकलमंदी थी कि वो रशिया चला गया था, मगर उसने क्या किया था, आम आदमी की तो फेवर की बात ही की थी ना कि हर आदमी का डेटा ली, मगर मैं कॉम्प्रोमाइज्ड हूं आपका गूगल अकाउंट से मेरी हर इन्फॉर्मेशन जहां पहुंचनी है वहां पहुंचती है, एप्पल से मेरी हर इन्फॉर्मेशन वहां पहुंचती है जहां पहुंचना चाहे। मैं और आप समझते हैं कि शायद हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस को एंड टू एंड जो है इंक्रिप्टेड कर दिया जाता है, नो, मगर ईरान ने अगर लोगों को सजाएं दी तो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, अपने कवानीन के लिए अगर उन्होंने ये किया तो ये उनका इंटरनल मैटर है, आई एम नॉट देयर। मगर ईरान ने अगर इसराइल को किसी ने टफ टाइम दिया है ना तो दैट इज ईरान। ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं, आपका मेरी राय से मुत्तफिक ना होना इज अ नेचुरल बात, मगर अगर आप कंपेयर करके देख लें तो ईरान पेड द मोस्ट प्राइस। और मैं पिछले 10 दिन से यही बात कह रही हूं, अनफॉर्चुनेटली हम बाजू का सोशल मीडिया से न्यूज देते हैं, व्हाट्सएप से न्यूज देते हैं, मेरे ऑफिस में एक दिन आई थी, मैं स्ट्रिक्टली हमें से कोई भी अब सोशल मीडिया से सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो माइक पे आएगा उनमें से कोई भी व्हाट्सएप से मैसेज लेगा, बिकॉज फैब्रिकेशन है। मैंने अभी कल ही की आपको खबर बताई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बजाय इसके कि हम प्रॉपर फायदा लें, नाजायज फायदा लेते हुए वो जो साद रफीक है उसकी वीडियो पे इतने कट डाले हैं कि एक आम आदमी यकीन कर लेता है कि उसने 3 लफ्ज भेजे हैं किसी एक शख्स के ऊपर, उसने किसी एक शख्स की तारीफ की है, हालांकि वो एडिटेड वीडियो है। मगर डोंट बिलीव इन द सोशल मीडिया। आपको मैंने फैक्ट दिखाया है कि जो फतवा दिया था ईरान ने सिर्फ ये कि मुस्लिम उम्मा इकट्ठी हो जाए, मुस्लिम उम्मा इकट्ठी होने के काबिल ही नहीं है, आज सीसी की हुकूमत है मिस्र में, कौन है सीसी? जहाज का प्लेन का क्रैश हुआ था, दिस इज द ओनली मैन, आप इसको ये भी कह सकते हैं जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चेके, दिस इज द ओनली मैन हु वॉज नॉट इन दैट फ्लाइट, और जितने बाकी लोग थे फ्लाइट का क्रैश हुआ था, उसके बाद सीसी को एक्सपोर्ट किया गया, इसको इजिप्ट में लाया गया, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। तो ये होशीबाजगियों की सूरत में नथ डाल के रखी हुई थी उन्होंने। अब बहुत से लोग कहते हैं लो जी देखा ना, फिर उसका तो तल्लुक शाम में भी वो उसके बंदे हैं, उनका तो इराक में भी है, और इसराइल ने जब रिटेलिएट किया था तो इसराइल ने शाम को भी हिट किया था, इसराइल ने इराक को भी हिट किया था, और इसराइल ने ईरान को भी हिट किया था। अब आपने अभी एक और बात जो कही आपने उसमें ये कहा कि क्योंकि ईरान ने वो एक मिसाइल चला दिया उसके बदले में बंदे मर गए, आपको क्या पता कि ईरान ने अगर वो मिसाइल चलाया तो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर तो प्रॉब्लम है, कितनी सैंक्शन उसने ली है। शाजी ने भी मैं ज्वाइन किया, एनीवेज एक गाना सुनिए, गाना
सुनो जी, उसके बाद एक गाना हम आपको नूरजहां का भी बड़ा प्यारा सुनाएंगे।
गाना सुनने से पहले आपको टाइम देख लें, 7:05 हो गए हमें टॉप ऑफ द आवर,
टॉप ऑफ द आवर ले लें। आज माजिद भाई मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ मोमिन हलाल मीट के ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले मैं मोमिन हलाल मीट पे गई हुई थी, शाजिया जी उसको एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, और मैं अपने तमाम लिसनर्स को कहती हूँ कि अपने स्मॉल बिजनेसेस को जरूर सपोर्ट करें, वो अपने स्टोर्स को फुली लोड करते हैं और इतना अच्छा गोश्त तैयार करके देंगे, आप एक दफा विजिट कीजिएगा मोमिन हलाल मीट, 1010 ड्रीम क्रेस्ट यूनिट नंबर 12 में, दिस इज जस्ट नॉर्थ ऑफ एग्लिंटन, एग्लिंटन के एक ब्लॉक नॉर्थ में आपको मिलता है 1010 ड्रीम क्रेस्ट पे मोमिन हलाल मीट, तशरीफ लेके जाएं। एक गीत है मेरे रश के कमर, क्या कौन
मेरे रश के कमर, बड़ा प्यारा गाना है वो सुनाए, उसके बाद एक नूर जहां का गजब का गाना है,
इससे पहले
उसकी एक हिस्ट्री है, लेकिन पहले टापे ले लें आप,
पहले टापे लेंगे, टापे लेने के बाद फिर हम प्रोग्राम में वापस आएंगे। 4166201778 हमारा फोन नंबर है।
यू आर लिसनिंग टू WTOR 770 AM यंगस्टाउन टोरंटो।
770 AM दिया नशरियात सुनन ते हालात हाजरा तो बा खबर रहने दे वास्ते न्यूज इंफॉर्मेशन एनालिसिस इलेक्ट्रिक गड्डियां दे विच ई आवाज ऑफिशियल ऐप या साडी वेबसाइट eawaz.com लोकल नंबर
6478724900। अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है।
ओ फिर बने भी क्यों ना, क्योंकि बेडरूम सेट, सोफा सेट, मैट्रेसेस, डाइनिंग टेबल, डेकोरेटिव आइटम्स, गल कीजिए सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल लई नो ब्याज।
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171।
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ईद मेला 27 अप्रैल चंगुजी पार्क ब्रैम्पटन में, ढेरों फ्री फन एक्टिविटीज आपकी मुंतजर है, हलाल फूड ट्रक्स, डांस, म्यूजिक परफॉर्मेंसेज, गिव अवेज और बहुत कुछ। मकामी तंजीमों की मदद के लिए अपने साथ कोई भी खिलौना या खराब न होने वाला फूड आइटम लाइए और कम्युनिटी को वापस देने के जज्बे को तस्कीन दीजिए। मजीद मालूमात के लिए brampton.ca/ईद।
शॉपर्स हो जाइए तैयार, लीजा कॉस्मेटिक्स फिर से लेके आ रहे हैं बड़े ब्रांड्स की बड़ी सेविंग्स और बिग सेल खास आपके लिए।
जी हाँ, वर्ल्ड फेमस ब्रांड के परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स,
80% तक की सेविंग्स ऑन योर फेवरेट ब्रांड्स।
बस आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम।
ध्यान रहे, सेल तो सिर्फ अप्रैल 20 से मई 12 तक ही है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे। विजिट lizascosmetics.com।
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर साल वांग इस वरे भी ओंटेरियो सिख एंड गुरुद्वारा कौंसल वालों खालसे दा साजना दिवस डाउनटाउन टोरंटो विखे होवेगा, जो सवेरे 9 CNE दे प्रोग्राम तो शुरू होके 1 नगर कीर्तन सिटी हाल नु रवाना होवेगा। समुची साध संगत नु हुम हुमा के इस नगर कीर्तन विच शामिल होने दी निम्रता सहित बेनती कीती जांदी है।
ਇਸ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
क्या आपके घर और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल हो रही है? क्या आप दुरुस्त इंश्योरेंस कवरेज के लिए अच्छी कीमत की तलाश में हैं? तो फिर आपको ऑल स्टे एजेंसी के राजा मुदस्सिर को 6472903773 पर कॉल करनी चाहिए। आज ही कॉल करें और आप दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस कराते वक्त तकरीबन $1,775 की बचत कर सकते हैं। राजा मुदस्सिर 6472903773 ऑल स्टेट के साथ अब महफूज हाथों में है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो, ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब। लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 5196220660 जा quicktrucklube.com QTL बिकॉज़ वी केयर।
साडे कोल योजना है जो कि ओंटेरियो नु जोड़ रही है। रोजाना आवाजाही नु घटाउन लई नवीं सड़कां ते हाईवेज दा निर्माण अते वध रहे इलाकियां नु जोड़न लई पब्लिक ट्रांसिट दा विस्तार। यही सब इस लई तां जो तुसी तेजी नाल सुरक्षित अते आसानी नाल आउण जाण कर सको। ontario.ca/builds ते जाके होर जाणो। इस दी अदायगी ओंटेरियो सरकार वल्लों कीती गई है।
मछली अंडे दूध दही ते सस्ते चावल मिलते, भले पकौड़ियां ताजा मिठाइयां गर्म समोसे मिलते, बटाला सुपर मार्केट।
स्कारपोरो दी वाहिद ते मिसाली सुपर मार्केट बटाला सुपर मार्केट 200 मार्कम रोड स्कारपोरो, मार्कम रोड ते इंग्लैंडन दा संगम, फोन 416-264-3111।
मेरे ना एक भाई हैं यहाँ पे, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, उसको 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 लिखना भी बहुत अच्छी, आर्टिकल्स भी बहुत अच्छे लिखते हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी उन्होंने किया हुआ है, वेरी नोन पर्सन। तो उनकी हुसैन हकानी से बड़ी प्यारी दोस्ती थी। अगेन अब जो हुसैन हकानी को पसंद करने वाले हैं वो कहेंगे आप ये बात क्यों कर रही हैं, और मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं करी, मैं डायरेक्ट आपसे बात कर रही हूँ। मैंने हुसैन हकानी से जो मेरी एक दो बार मुलाकात हुई, उन्हीं के घर में, बहुत बहुत प्यारे दोस्त उन्हीं के घर में ही वो आके ठहरा करते थे, नॉट इन एनी होटल। खैर उन्होंने एक उनको जॉब मिली, जॉब मिली, और जॉब मिलने के बाद जाहिर दोस्त एक दूसरे को फेवर। उस ये वो जमाना था जब हुसैन हकानी वॉज एज एन एम्बेसडर इन अमेरिका, अमरीका में। अब देखिए उन्होंने उनको फिर जरदारी साहब को दुख होगा कि आप फिर हमारी पार्टी के बारे में कह रहे हैं। ये वो दौर था जिसमें जरदारी साहब हुआ करते होते थे और जरदारी साहब ने इनको एम्बेसडरशिप दी थी अमेरिका की, और थिंक टैंक का हिस्सा थे। उसके बाद आपको याद होगा ये वही दौर था जिसमें ब्लैक वाटर का पाकिस्तान ये एम्बेसडर थे और पाकिस्तान शिप के शिप जाया करते थे जिनको कोई देख भी नहीं सकता था, पता नहीं उन शिप में क्या था, उन्हीं की जगहों पे वो ठहरा करता होता था। इन्होंने अपने दोस्त को जॉब दी, जॉब इन्होंने ले ली। आखिरी दिन जो बात हुई उन्होंने कहा कि अच्छा इसके बाद जॉब भी बहुत बड़ी अमाउंट के ऊपर, मतलब ये एम्बेसडर्स की तनख्वाहें इतनी होती हैं $20,000-$25,000 के बराबर अच्छी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे आर्टिकल अराउंड द वर्ल्ड छपा करेंगे पूरी दुनिया में, जैसे इस वक्त हामिद मीर साहब के वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल्स छपते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे आर्टिकल्स पूरी दुनिया में छपेंगे और जिसमें हम आर्टिकल्स देंगे तो नाम क्योंकि हमने तुम्हारा यूज करना है, ये तुम्हारी तनख्वाह होगी। खैर कहते मैंने हामी भरी, बट लास्ट वर्ड जो था सारा सेटल हो गया, तीन चार मुलाकातें हुई वगैरह वगैरह। लास्ट डे जब फाइनल सेटलमेंट हुई, इनसेट के यू नो वी विल बी नॉट इन कॉन्टेक्ट यू नो ओपनली, मगर तुम कैनेडा में फलां बंदे के साथ कॉन्टेक्ट में हो गए। वो एक दो लोग हैं जिनका नाम, एक तो लजनत सिपरे की तो डेथ हो गई है, उन्हीं का नाम दिया कि आप अब आप डायरेक्ट उनके साथ कांटेक्ट करेंगी और हर महीने की इस तारीख को आपके अकाउंट में पैसे आ जाया करेंगे। कहते आई केम होम, जिस शख्स का नाम दरमियान में आ गया था, आई नेवर थॉट कि ही विल बी पार्ट एंड पार्सल टू दैट। कहते वो रात मैं सोया नहीं, अगले दिन सुबह मैंने फोन उठाया और मैंने अपने दोस्त को कहा कि सॉरी आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मैं इस पे मैं मुझे ये जॉब नहीं चाहिए। ही इज डूइंग सम बिजनेस हियर इन, आई विश कि वो एयर पे आके इस बात को एक्सेप्ट कर लें, मगर फिर वही बात है, दोस्तियां टूटती हैं। और मुझे कहने लगे कि आज मैं ईरान को जिस जगह पे देख रहा हूं ना, ये होता ये है कि दिस इज हाउ द एजेंसीज वर्क। किसी एक मुल्क को इतना प्रोपेगंडा इतना किया जाता है कि उसको बिल्कुल उनके लोगों में।
बाबा जी मैं यही कहती हूँ कि जिन लोगों ने ईरान को देखा हुआ नहीं है ना, अब मेरे पे भी ये फतवा लगा देंगे, वो शाजिया जी शाशिया है, नथिंग टू डू विद शिया और सुन्नी और एनीथिंग। जिन लोगों ने बट हक की बात करनी चाहिए, वही आपकी बात है, जिन लोगों ने ईरान देखा नहीं है ना, मेरा उनको मशवरा है कि वो ईरान को जाके देखें। पिछले 25 साल से कॉन्स्टेंटली बैक टू बैक वो यूएस सैंक्शंस के अंडर हैं, इसके बावजूद वो इतनी प्रोग्रेसिव कंट्री है, इतने वो शरीफ लोग हैं वो ईरानी जो हैं। आप देखें कि हमारे मुल्क में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसमें लड़का और लड़की औरत और
इस्लामिक हो रही है।
नहीं नहीं सुने, उसमें हम बसों में इकट्ठे बैठ सकते हैं, औरतों के अलहदा सेक्शन बनाए हुए हैं, मर्दों के अलहदा सेक्शन बनाए हुए हैं। ईरान में आप जिस वक्त सफर करते हैं ना जी, बसों के अंदर औरतें बिजनेस कर रही हैं, वो स्पोर्ट्स के अंदर हैं, अपनी फैक्ट्रियां चला रही हैं। हम लोग एक दफा रात को बहुत देर से आ रहे थे, तो हमारे साथ जो प्रोमोटर थे, हमने उनसे पूछा कि भई ये औरतें इतनी देर से कहां से आ रही हैं। उन्होंने कहा जी अपनी फैक्ट्रियां चलाती हैं, और रात को इनकी फैक्ट्रियां देख कोई उधर आपको फकीर नहीं नजर आएंगे वहां पे। और जिस तरह से वो अपना लेकिन वेस्टर्न मीडिया में आप देखें, ओ जी बड़ी गुर्बत है, बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है,
अभी रिसेंटली वहां खाना जंगी कराने के चक्कर में थे वो जो लड़कियों।
इससे पहले भी इन्होंने जो है बड़ी वहां पे तबाही मचाने की कोशिश की है, बट दे आर अ वेरी रिजिलियंट
मगर
और बड़ी जो है गैरतमंद कौम है।
आपने बड़ा प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया है कि रिजिलियंट कौम है। इराक की बात, आप इराक की बात कर लें, आप दमिश्क की बात, इराक की बात कर लें, आप ईरान की बात कर लें, आप शाम की बात कर लें, आप लेपो की जंगों का जिक्र कर लें, पुरानी हिस्ट्री निकाल के देख लें, ये वो सल्तनतें थी जो मिलिया मेट होने के बाद हर बार उठ के खड़ी हुई। सऊदी अरेबिया में कभी ऐसा नहीं हुआ था। सऊदी अरेबिया में तो शहजादे शहजादे, सऊदी अरेबिया को तो होश आती है शाह फैसल के बाद, जब वो भुट्टो साहब ने बिल्कुल ब्लैक गोल्ड को भुट्टो साहब ने इंट्रोड्यूस किया था और उसकी सजा भी पाई। एनीवेज
अच्छा चलो जी, आज को आज आपको कहानी सुनाते हैं बड़ी जबरदस्त आरफा वजी, एक इतनी प्यारी आज आपको कहानी।
मगर अगर आप शाजिया की इस कहानी के दौरान शाजिया से और स्टूडियो में कॉल करते हैं तो मैं बिल्कुल प्रमोट करना चाहती हूं कि आप स्टूडियो में कॉल कीजिएगा, आपकी पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन और आपकी कॉल को जो भी आपने कहना है आप कहें। वी आर डेफिनेटली हियर टू लर्न फ्रॉम ईच अदर और ओपन माइंड के साथ। देखिए वी कैन एग्री टू डिसएग्री मगर हम रिस्पेक्टफुली अपने मैसेजेस को कन्वे करेंगे। स्टूडियो का नंबर 416-620-1778। एक गीत के बारे में शाजिया जी बात करेंगे।
एक गीत है लेकिन उस गीत की पहले मैं हिस्ट्री सुनाऊंगी, और वही जो हम बात कर रहे हैं ना कि ईरान का जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर की असल में सारी बात होती है, वही जो आपने डॉक्टर नकवी की भी बात की, एक कैरेक्टर की बात होती है कि उस बंदे ने उसका कॉन्शियस जो है। तो कैरेक्टर की बात हम कर रहे हैं, और ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े खानदान का होने की जरूरत है कि आपका बड़ा अच्छा कैरेक्टर रहेगा। आपको पता है कि गुलाम मुस्तफा खर जो हैं वो जो थे पंजाब के गवर्नर थे, लेकिन ये बात शायद किसी को पता नहीं है बट इट इज मेंशन स्लाइटली, जिन लोगों ने तहमीना खर की किताब पढ़ी है ना माई फ्यूडल लॉर्ड, उसके अंदर ये सारी चीज का जिक्र है कि खर साहब ने एक शादी जो है वो रेड लाइट एरिया से लाहौर से की थी। उस लड़की जो है उसका नाम जो था कोई दिल बहार था उस लड़की का नाम, और उससे की थी और उसको फिर गवर्नर हाउस में वो लेकर भी आए थे, वो उनके साथ रहती भी रही। फिर उसके बाद वही हुआ कि अनफॉर्चुनेटली उनकी उनके साथ जो है वो नहीं चल सकी और खर साहब ने उनको जो है वो दे दिया, डिवोर्स दे दी। लेकिन आपने वही बात कैरेक्टर की जो आ जाती है, आपने कभी नहीं सुना होगा कि उस लेडी ने खर साहब के खिलाफ कोई किताबें लिखी हों या एक्सप्लॉइट उसको करने की कोशिश,
और ना खर साहब ने,
और ना खर साहब ने किया। लेकिन खर साहब तो बहुत बड़े लैंडलॉर्ड के बेटे थे ना, ये तो रेड लाइट एरिया की लेडी थी ना, गुल ये जो दिल बहार थी रेड लाइट, तो उसने कोई इस तरह का नहीं किया। और आपको पता है कि उस जमाने में जो लाहौर के रहने वाले हैं, लाहौर के रहने वाले बताते हैं कि उस जमाने में जब खर साहब गवर्नर थे लाहौर के पंजाब के, तो वहां पे उनके वो जो वहां पे गवर्नर हाउस है वहां पे बाकायदा गाने की महफिलें और ये वो, खुद भी वो बड़े शौकीन थे तो वो करते थे।
वो अभी भी बहुत शौकीन,
वो बड़े शौकीन है। हाँ,
मेरी अभी भी जब उनसे बात होती है, आपको पता है आज भी
जी,
अब भी मेरी जब उनसे बात होती है, मेरा कोई राबता नहीं, मेरा लियाकत मलिक अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, बिकॉज दे आर ऑल क्लोज फ्रेंड्स। मैं आज भी कॉल करती हूँ तो खर साहब मेरा फोन खुद लेते हैं
जी। तो खर साहब बल्कि आप सुने समझे कि जिस वक्त ये हीरा मंडी से वो शादी करके इसको लेकर गए लेडी को, तो वहां पे लाहौर के लोग कहते हैं कि हीरा मंडी के अंदर बाकायदा मिठाइयां बांटी गई। उन्होंने कहा जी साडा जवाई तो बादशाह लग गया जरा है वे, तो वो इस तरह से था। तो लेकिन उस लेडी ने, अच्छा वो लेडी जो है है वो शायद कम लोगों को पता होगा. शी देन लेटर ऑन वर्क्ड इन फ्यू पाकिस्तानी मूवीज ऑल्सो, और उसका नाम नाहिद था और उसके बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन उसने एक ऐसी आइकॉनिक मूवी में काम किया है और एक ऐसा आइकॉनिक गाना उसके ऊपर पिक्चराइज किया हुआ है कि जिसका नाम हम आज भी लेंगे ना तो आप झूम उठेंगे. नूर जहां का एक मोस्ट आउटस्टैंडिंग सॉन्ग केंदे ने नैना उस नाहिद के ऊपर पिक्चराइज हुआ था जो खर साहब की वाइफ थी फ्रॉम रेड लाइट एरिया. लेकिन उस औरत का कैरेक्टर देखें, नो नॉनसेंस एट ऑल इवन आफ्टर डिवोर्स. ये गाना हम सुनते हैं कहते केंदे ने नैना.
मगर कब?
अब कुछ कहना वहना नहीं है, बस लेके जाना पड़ेगा आपको हियर मैक्स हियरिंग सेंटर पर.
अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन, नो ऑब्लिगेशन, कॉम्प्लीमेंट्री हियरिंग टेस्ट.
हियर मैक्स हियरिंग सेंटर, कॉल शिराज 416-792-8792.
रिंगिंग, बजिंग, हिसिंग, टाइम टू गेट योर हियरिंग चेक.
बाय वन हियरिंग एड गेट वन 15% ऑफ 416-792-8792. अल्टीमेट हियरिंग सॉल्यूशन 416-792-8792.
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती? एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी हैं. नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा. 28 साल का अंडरराइटिंग का तजुर्बा है. लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो. 9056075000 905-607-5000.
जी साहब, नाजरी वेलकम बैक अगेन। एंड साहब चलिए अब आप लोगों की कॉल्स, यस अभी जब गीत चल रहा था उस वक्त काफी कॉल्स आ रही थी, तो हम चाहते हैं कि भाई आप दोबारा कॉल करें। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। एक कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं, कौन बात कर रहे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह, अजमत सिद्दीकी बात कर रहा हूँ
जी। अजमत भाई फरमाइए।
अच्छा, मैं जो है यानी वो अफगानी से मुखातिब हूँ अभी। यानी मसला ये है कि मुझे मालूम है कि भाभी के अकायद का भी मालूम है, पाकिस्तान से उनकी मोहब्बत का भी मालूम है, यानी उसमें मुझे कोई शक नहीं। मगर मसला ये होता है कि वो जो बात कहना चाहती हैं वो इतने जज्बात में बह जाती हैं कि उनके अल्फाज जो है उनके जहन का साथ नहीं देते। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जब आपका प्रोग्राम शुरू हुआ
जी, तो उन्होंने
सलाम के बारे में एक बात कही, और मुझे पूरा यकीन है कि उनका भी हर मुसलमान की तरह ये अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम आसमानों में अल्लाह ताला के पास जिंदा सलामत मौजूद हैं। मगर वो कह गए कि उनको जो है वो फांसी दे दीजिए। हाँ, कुछ लोग कहना चाहते थे, कुरान शरीफ की आयत है, वमा कतलहू वमा सलबहू वलकिन शुब्बिहा लहू, ना उनको कत्ल किया गया ना उनको सूल पे चढ़ाया गया, लोग अलाइक के साथ ये सब कुछ हुआ। तो मगर वो इतने वो जज्बात में बह जाती हैं कि अब जो उनके लिसनर जो राय बनाते हैं वो जो बात उनके कानों में पहुंचती है उसके ऊपर बनाते हैं। आपके जहन में जो चीजें वो तो लिसनर नहीं सुनता, तो इसका वो ख्याल किया करें। हेलो,
आपका मैसेज पहुंच गया सर। आपका मैसेज एज सच हम आपको अभी पहुंचती हूँ इधर, तो आपका मैसेज हम बता देंगे। बहुत शुक्रिया।
मैं यही चाह रहा था कि ऑफ द एयर आप उनको ये बात समझा दीजिएगा, यानी मैं उनके अकायदों को शक नहीं कर रहा हूँ।
हाँ नहीं, एक कोई मेहमान आ गए स्टूडियो में ऑल ऑफ अ सडन, से उनसे बात कर रही हैं वो, दो मिनट।
हाँ, जी जी।
बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। ओके, नेक्स्ट कॉल जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम
जी। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं सर?
सर इकबाल नाम है मेरा।
इकबाल भाई फरमाइए।
बस सर अभी वो मैं खर साहब की तारीफ सुन रहा था कि वो जो है वो मतलब रेड एरिया से लेके आ गए खातून, और उसके बाद जो थी वो फिर नाच गाने में लग गई, तो इतनी इज्जत जो उस खातून को दी है, बस उसी की तारीफ के लिए मैंने ये फोन किया है कि आइंदा भी ऐसी औरतों के बारे में बताते रहा करें जिनकी तारीफ जो है हम मतलब अमूमी तौर पर नहीं करते, मगर आप लोग करते हैं। आप ये बताइए, औरत जो है जो अगर उसका वहां से ताल्लुक था तो वो क्या बगैर कॉन्ट्रैक्ट के उसने कोई शादी की होगी? उसको पैसे मिल गए होंगे, इतने दिन रहना है, इतने दिन।
अब ये तो कयास आ रही है ना
सर, कयास आ रही नहीं है,
कयास आ रही होती है ये तो। अब ये ना मुझे
सर, मैंने स्पेसिफिक बुक का रेफरेंस दिया था, बुक के अंदर ये बातें नहीं लिखी हुई है ना।
वो जो धंधे वाली जो जगह होती है ना उसमें सारे ये कॉन्ट्रैक्ट ही चलते हैं, उसमें कोई जो है पाकबात खातून नहीं होती जो कि ये कहेगी कि मैं जो हूँ अब वो बिल्कुल वो बन गई हूँ कोई उमराव जहानदा भी ऐसी नहीं थी। मिर्जा हादी रुसवा ने वो लिख के खुद तो रुसवा हो गए, उसको इज्जत बख्श गए। आपने भी आज उनको उसको इज्जत बख्श दी जो तलाक के बाद जो थी दोबारा नाच गाने में लग गई।
अच्छी बात। सर मुझे इस चीज का ज्यादा इल्म नहीं है, तो मैं
जो आपके साथ मोहतरमे बैठी है उनको बहुत इल्म है, आइंदा भी ऐसी खवातीन लाते रहा कीजिए ताकि हमें पता चले।
हम तो हिस्ट्री का एक हिस्सा बता रहे हैं, हम तो एक हिस्ट्री एक सुना रहे हैं कि जिस वक्त वो पंजाब के गवर्नर बने तो गवर्नर हाउस में कौन थी उनके साथ?
वो तो बदनाम जमाना उसकी तो हकूक जिस वक्त वो पंजाब का गवर्नर।
नहीं नहीं, और कौन से कोई नेक जमाना है, बाकी भी हमारे पॉलिटिशियंस वैसे ही।
हाँ, बाकी लेकिन वो जमाने का वो था जिसको जमात इस्लामी ने ठीक ठाक मतलब बाकायदा स्टूडेंट्स ने उसके पास जाके उसके ऊपर एहतजाज भी किया था।
बड़ी मेहरबानी,
ठीक है
अजमा भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी मेहरबानी आपकी।
अस्सलाम वालेकुम
जी। वालेकुम अस्सलाम वरह वबरकातहू। सर कौन बात कर रहे हैं?
जी मैं इमरान बात कर रहा हूँ।
जी इमरान भाई,
सर ये अभी जो साहब ने तो बड़ी अच्छी डिटेल से ही कह दिया, मुझे इसी कॉल से कहना था कि जो आप लोग इतनी जो खातून बैठी हुई आपके साथ या आरफा साहब या शाहजी साहब हैं वो इतनी तारीफ कर रही हैं, वो खर साहब कौन से शरीफ आदमी थे?
सर कोई भी शरीफ नहीं है, शरीफ कौन था? जरदारी साहब शरीफ है, शहबाज शरीफ साहब।
इस तरह मीडिया पे बैठ के आप लोग कैसे तारीफ कर रही हैं कि जैसे उन्होंने?
सर हम तो बुक की बात कर रहे हैं।
तो वो आप प्लीज एहतियात करें, वो बाजारी खातून थी, कुछ भी हो, साथ में बड़ी अच्छी एक्सप्लेन कर दी आपको,
बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सर आपको, बहुत मेहरबानी। 7:29:24 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं और अब
एक गाना सुनाए जरा प्यारा समाज भाई,
मेरे रश के कमर, मेरे रश के कमर,
वाह जी वाह, क्या बात, क्या बात।
गीत समाप्त फरमाइए, इसका किसी किसी शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है, इससे इस गीत का किसी शख्स का किसी से ताल्लुक नहीं है, और कोई शरीफ और कोई ना शरीफ दूसरा वोट तो नहीं कहूंगा आप। तो चलिए साहब, उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में ये गीत है, समाप्त होगा।
चोट दिल पे वो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमल,
मेरे रश के कमल, पूरा प्यारी नजर,
जोश ही जोश में मेरी आगोश में आके तू जो समाई
स्ट्रेस चाहे लाखदा होवे या काखदा, उस जिंदगी मुश्किल कर देता है। बाकी बातें एक तरफ, आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस का हल है शिराज शफीक, जिनके पास है मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्राइवेट फंड्स। लास्ट मिनट क्लोजिंग्स हो या डिफिकल्टीज, सभी के लिए शिराज शफीक 416-502-8000, लाइसेंस नंबर 10845, इंडिपेंडेंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड।
ओपन माइक कैफे एंड कुजीन, जहां आपको मिलेंगे मजेदार खाने जैसे कि लाहौरी गोट कढ़ाही, शिनवारी गोट कढ़ाही, निहारी, हलीम, पाए, बिरयानी, سیخ کباب، چکن تکہ، شورما، پیزا اور مزیدار لاہوری چھولے، پالک پنیر اور بہت سی ویجیٹیرین آپشنز۔ اوپن مائک کیفے اینڈ کوزین، وہی دیسی انداز اور وہی دیسی ذائقہ۔ کیٹرنگ اسپیشل، 8 آئٹمس فار جسٹ 999، منیمم 30 پیپلز۔ 1310 دندا اسٹریٹ ایسٹ، مسیساگا، یونٹ 3۔ آرڈر ناؤ، کال 416-526-6800۔
دانتوں کا کوئی بھی مسئلہ ہو یا کرانی ہو ڈینٹل کلیننگ، ڈاکٹر فیاض اینڈ ایسوسیٹس آپ کی پہلی چوائس۔ پیراڈونٹکس، آرتھوڈونٹکس، ڈینٹل امپلانٹ، کاسمیٹک ڈینٹسٹری اینڈ مچ مور۔ وارم اینڈ فرینڈلی ایٹموسفیئر جہاں آپ اپنی زبان میں اپنی تکلیف بیان کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ڈینٹل انشورنس ہے یا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسکاربرو میں ایک اور مسیساگا کی دو لوکیشنز پر آپ کو سرو کرتے ہیں۔ اپوائنٹمنٹ کے لیے ابھی کال کیجیے 905-232-5678 مسز ساگا، 416-757-9999 اسکاربرو۔
جی صاحب، پروگرام میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں۔ مجھے ابھی بیکاز میرے آفس میں بعض اوقات کوئی ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ مجھے جانا پڑتا ہے، مجھے ایک بھائی نے جو ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات کی نا، دیکھیں میں وہ پوری بات نہیں کر رہی تھی، میں اس وقت صرف طاقتور لوگوں کی بات کر رہی تھی جن کی وجہ سے ہوا، حالانکہ اصل واقعہ تو یہ تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سلیپ پہ نہیں گئے تھے، ان کا ہم شکل تھا، ان کا حواری تھا جو ان کا ہم شکل ہوا تھا۔ بہرحال آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو دیٹ ڈیٹیل، اور پھر وہ سلیپ کے اوپر کیسے چلے جاتے ہیں، تو میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتی تھی۔ باقی اللہ کرے کہ میں اور آپ سیکھتے رہیں، لرن کرتے رہیں۔ تو میں ایکچولی اس واقعے کی ڈیٹیل پیش نہیں کر رہی تھی، مگر میں نے ایز اے ریفرنس کے، آپ سوچئے کہ ایک بچہ جو حضرت مریم کے ہاں پیدا ہوتا ہے اور وہ پیغمبر تھا اور اس نے اپنی ماں کی گواہی بھی دی تھی، اور وہ بچہ اپنے بچپن میں بولا تھا جس نے اپنی ماں کی گواہی دی تھی، اس کے ساتھ بھی جو ہوا۔ تو بہرحال میں اس واقعے کی ڈیٹیل میں نہیں گئی تھی، الحمدللہ سارے کے سارے مسلمز کو پتا ہے، جو کرسچنز ہیں ان کو اس واقعے کا پورے کے پورے کا پتا ہے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، سلیب پہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں گئے تھے، ایک شخص جو ان کا ہم شکل تھا حواریوں میں سے، یا ہو گیا تھا یا مغالطہ کھایا تھا، اس کو سلیب پہ لے کے گئے تھے۔ دس از واٹ اٹ از۔ تو بہرحال آپ کا بہت شکریہ پھر بھی اگر آپ شامل ہوئے، میں نے تو صرف اپنا بتایا ہے کہ دس از واٹ آئی وانٹیڈ ٹو،
کانٹیکسٹ سمجھنے کی بات ہوتی ہے نا کہ کس کانٹیکسٹ میں،
اس کانٹیکسٹ میں میں نے بات کی تھی، مگر میں نے اس واقعے کی تفصیل نہیں بتائی تھی، صرف یہ کہ جو لوگ طاقتور ہیں وہ کسی بھی وقت کسی کو بھی۔ اور اگر آپ پیچھے کی طرف جائیں نا، مطلب میرا یہی کچھ زیر کرنا ہے، دیر واز اے ٹائم کہ جوئش اور کرسچنز کی کبھی بھی نہیں بنی تھی، آج اگر بنی ہوئی ہے تو مت، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں اور ان چیزوں کے بیچ میں نہ صدا کی دشمنی ہوتی ہے۔
بابا جی انہوں نے تو مسلمانوں سے ہیلپ مانگی تھی، جیوز جو تھے انہوں نے تو آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیلپ مانگی۔
دیکھیے جی، جیوش نے کتنی قیمت چکائی کہ آپ دیکھیے کتنی جگہ، نہ امریکہ میں سیٹل ہونے دیا، نہ انگلینڈ میں سیٹل ہونے دیا، نہ جرمنی میں سیٹل ہونے دیا، اور جس علاقے میں آج ان کو آباد کیا ہے، میں تو آپ یہ بھی ناپسند کریں گے، میں جب دیکھتی ہوں کہ فیرو جو تھا، فرعون جو تھا، وہ مصر میں تھا، اور اس علاقے میں یہ یہودیوں کی بہت بڑی آبادی تھی، دے آر فائنینشلی ویری اسٹرانگ۔ اور آج سے 10 سال پہلے بھی میں آنے آپ میں نے 10 سال پہلے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اگلا ابھی تو آپ اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، نیکسٹ اسٹاپ از مدینہ پاک، بیکاز مدینہ پاک میں اسٹرانگ یہودیز موجود تھے۔ اللہ کرے میری زندگی ہو نہ ہو، آپ دیکھیے گا یہ چیزیں کس طرح سیٹل ہوتی ہیں۔ اور سعودی عربیہ اب جو ریزورٹس بنا رہا ہے، اگین یہ بڑے حکومتیں اور بڑے لوگوں کی بات ہے، مگر ان بٹوین لائنز جو آپ کو سمجھ آتا ہے، دیر از اے روڈ میپ، جو باقاعدہ روڈ دیے جانا تھے، یہی ابراہم اکارڈ جو ہے، جس میں تمام مسلمان بھی اب جیوش اور کرسچنز کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم ایک ہی ریس ہیں، ابراہیم کی ریس ہیں، ابراہم اکارڈ یہی تو ہے۔ کالر میرے ساتھ جو ہے، میں ان کی بات سنوں گی۔ ایک بات میں آپ کو کہتی ہوں کہ ناؤ 6 سے لے کے 9 بجے تک، آج کل یہ مئی کا مہینہ، اپریل کا مہینہ، ہم 8 بجے تک ہوں گے، مئی میں ہم 8:30 بجے تک ہوں گے، 6 سے لے کے 8:30 بجے اوپن لائنز ہیں، یو کین گیو اس ا کال، یو کین پٹ یور کنسرن ان اینڈ یو کین سی واٹ ایور، میں آپ کی پوری کی پوری کال لینے کی قائل ہوں۔ کہتے ہیں نا زندگی اور عمر انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی ہیلو हेलो जी, आवाज थोड़ा सा ऊंची बोल लें तो बहुत अच्छा हो जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हालांकि जब जरदारी साहब का कॉल नहीं लग रही थी ना, तो एक दो लोगों ने इसलिए कॉल करके कहा था, जिसमें जहीर भी थे, कि हम सिर्फ देखना चाह रहे थे कि आपकी लाइन की
आ रही?
जी अब बहुत अच्छी आ रही।
अच्छा चले, मैं माजिद भाई का करना चाहता था, बड़ा जबरदस्त रश्ते कमर का उन्होंने प्ले किया है, और उससे पहले डिस्क्लेमर भी दिया, शायद हम वो मजाक कर रहे थे कि वो गाने का किसी से ताल्लुक नहीं, पता नहीं क्यों अल्फाज सुनते सुनते मुझे फिर हर साहब और उनकी वो एक्स याद आ गई। अल्फाज तो गौर किया करें।
क्या कहा बेचारे मौजूद भाई ने।
एकदम फिर से आपकी लाइन कटी थी, आपकी लाइन कटी ना, वो डिप हुई थी। नहीं, फिर से कह दे
माजिद भाई ने तो इतने
माजिद भाई
कलेक्शन से बेचारे, और
माजिद भाई पे तो जो थपती आए वो लाजमी है।
नहीं बेचारे,
शायद उन्होंने गाने के अल्फाज पे तवज्जो नहीं दिया होगा। चले
अल्लाह हाफिज़।
और सबको खुश
रहें, बहुत खुश रहे, आप भी खुश रहे, आबाद रहे। स्टूडियो का नंबर 416-602-01778। जी अस्सलाम वालेकुम।
वस्सलाम आरफा बाजी, मुझे आप मोमिन फोन की जब कमर्शियल करती है ना, तो फोन नंबर नहीं देती, मुझे नंबर चाहिए प्लीज।
हाय ग्रोसरी स्टोर, आपको ग्रोसरी फोन पे आनी है, जाएं, मैं भी आज गई।
नहीं, मैंने कुछ पूछना है भाई। जब
उनका नंबर है 905-286-1998।
मिनट
286-1998।
थैंक यू बाजी।
ये फरूख भाई बोल रहे हैं?
जी।
जीते रहे आप, हमेशा आपकी आवाज मेरे साथ होती है, मेरा तो आवाज का रिश्ता है, आई ऑलवेज थिंक अबाउट यू। बहुत शुक्रिया। ग्रोसरी स्टोर का
998 बोला
जी, ये जिस बच्चे के नाम पे उन्होंने ये स्टोर रखा ना, वो मेरा ख्याल है उस 1998 में इनकी शादी हुई थी और 2000 में वो बच्चा पैदा हो गया था। उनके बेटे का नाम है मोमिन, जिसके नाम पे उन्होंने ये स्टोर बनाया। बहुत शुक्रिया। मैं ग्रोसरी स्टोर का इसलिए नहीं फोन नंबर दिया करती होती कि आपने कौन सा टेलीफोन पे ग्रोसरी मंगवा लेनी है, या आपने आप ग्रोसरी लेने के लिए तो यू गॉट टू गो देयर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी
अस्सलाम
जी, कौन बोल रहा है?
फिर मैं अजमत सदी बोल रहा
हूँ। अजमत भाई कैसे?
अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं जो है ना, ये उनके ये शाजिया बहन के डिफेंस के लिए मैं आया हूँ।
वो बुक सर, असल में हमारे लोग जो है ना, किताबें पढ़ते नहीं है, तो जो किताब किसी का जिक्र कर ले।
मैंने वो बुक पढ़ी हुई है।
जी जी बिल्कुल पढ़ी है ना, तो रेवलेशन पता होंगी जो उन्होंने
पढ़ी हुई है। बस एक चीज आपको याद दिलाता हूँ, ये भी याद रखिए, वो बुक जो है किसने लिखवाई थी?
हाँ बिल्कुल पता है मुझे बिल्कुल पता है।
तो बस मैं वो
आप बता दें किसने लिखवाई।
चलो मैं बता देता हूँ, ISI ने लिखवाई थी।
ISI ने लिखवाई थी। बहुत शुक्रिया। अभी आपने जब ये कहा ना, ISI ने लिखवाई थी, और जब भी मैंने जिन डॉक्टर साहब का भी जिक्र किया है, आज पाकिस्तान और ईरान के जो ताल्लुकात हैं, मुझे बड़ा गम है इस बात का कि हमारे अपने ही लोग दरमियान में दीवारें इकट्ठी खड़ी करते हैं, और जो उनका फतवा है, मैं आई वॉज इम्प्रेस्ड। मैं कहती हूँ हमारे नौजवान बच्चों की इनके बारे में, जब मैं ये बात हो रही थी, तो एक्चुअली ये फतवा मुझे मेरे बेटे ने निकाल के दिया कि ईरान की कितनी कोशिश है द होल मिडल ईस्ट मस्ट गेट टूगेदर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी
जी वांग साहब, आज क्या हाल चाल है?
अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, आपका क्या हाल है?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फरूख हाशमी बोल।
जी फरूख,
आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो वाकया बयान किया, वो मनोवन वो उसी तरह से है जितना से आपने बोला।
जी,
और उसमें एक बात ये थी कि ये कुरान में भी एक आयत इसकी आई है कि तुम अल्लाह से क्या मकर करोगे, मतलब अल्लाह की प्लानिंग
मकर करने, अल्लाह तुमसे बड़ा मकर कर सकता है।
बस अल्लाह तुमसे बड़ा मकर कर सकता है। और हुआ ये था, वो जासूस लेकर आया था हजरत ईसा को कत्ल करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने उसी जासूस की शक्ल जो है वो ईसा इस्लाम की तरह
कर दी,
और जो पकड़ने के लिए आए थे बजाय हजरत ईसा को पकड़ने के, हजरत ईसा को उठा लिया गया।
बहुत शुक्रिया।
हजरत ईसा को पकड़ने के बजाय वो उसी जासूस को पकड़ के उन्होंने लटका दिया। ये मतलब इसमें थोड़ा सा वो था। मेरी भी सुनी हुई बात है, अल्लाह का
मतलब नहीं नहीं सुनी, ये खुराद हो गई। आप कुरान पाक में वाजे तौर पे इन चीजों का जिक्र है, फिर आप तफसीर में जाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मगर बेटा मैं जिस चीज का जिक्र किया था ना, जिस भाई साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने वो वाकया पूरा नहीं बताया, तो मैं उस वाक्य का तस्करा नहीं कर रही थी। एक्चुअली मैं तस्करा ये कर रही थी, ये वो लोग थे आज भी दुनिया में जिनके पास पैसा है, जिनके पास मईशत पे कंट्रोल है, वो रूल करते हैं, वो जिसे हम कैनेडा अमेरिका में हम कहते हैं, आज तक बंदूकें क्यों नहीं बंद हो रही, असला क्यों नहीं बंद हो रहा, कितने बंदे मर गए, बिकॉज दे आर द लॉबियस्ट। जितना असला बेचने वाले लोग हैं लॉबियस्ट हैं। इन द सेम वे उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, यानी जो बादशाह था वो ईसाई बादशाह था, जिन लोगों ने ये करने के लिए मजबूर किया उनको पता था ईसा कौन है, बट वो उनकी जो तबलीग थी उनके बिजनेस पे असरअंदाज हो रही थी। बहुत शुक्रिया फरूख बेटा, थैंक यू, थैंक यू। अगला कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, उन वाकयात को नहीं हम कवर कर रहे थे, तो किसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम जी।
जी अस्सलाम वालेकुम
जी। जानू अपना नाम बताइए।
जी मेरा नाम मिस काजमी, और मैंने जो है वो शाजिया जी के डिफेंस के लिए कॉल की है।
थैंक यू।
मैं भी यही कहना चाह रही थी, जरा लोग सुनने वाले अपना विजन को थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में बात।
नहीं, लिटरली बात भी हम जो है यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अब नहीं कर सकते ना, क्योंकि लोगों को, हमारे लोगों को पढ़ने की आदत ही नहीं रही है।
एक लेकिन उनको बात करने दें,
उसी बात का
बाद में जवाब दें जी।
दो दिन पहले ही मैं इनको शाह जी को सुन रही थी, कल या परसों की बात है, तो ये इन्होंने ये बात जो इन्होंने की ना कि करेक्टर को आप देखें, तो उस पर इन्होंने बड़ा, शायद इस वक्त इन्होंने अपनी बात एक्सप्लेन नहीं की इसलिए लोगों को गलतफहमी हो रही है। इन्होंने कहा था कि आप जमायमा की मिसाल दी थी कि देखे वो भी तो किसी सेलिब्रिटी की डिवोर्सी है, और दूसरी इसके भी शायद इन्होंने जिक्र किया था, और फिर इन्होंने कंपेरिजन किया था आई थिंक रेहम खान, भाई रेहम खान भी तो इमरान खान चला गोकर से, फिर क्या बकवासियात जो किताब में लिखी है। तो ये तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल,
विजन जो है लोगों को बड़ा रखना चाहिए, और रेडियो पर आकर जब आप लिसनर बनते हैं तो फिर थोड़ा सा अपने जितना रेडियो वसी है, जितनी इसकी रेंज फ्रिक्वेंसी वसी जाती है, उतनी आपको सुनने के लिए भी वसी विजन जो है वो।
थैंक यू। अपना नाम बताइए बेटा एक दफा। काजमी, मिस काजमी, वंडरफुल,
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।
हाँ, किसी ने कहा ना कि
दूसरी बात ये कि ईरान के हवाले से भी जो उन्होंने कहा ना कि वो 25 साल रह के भी उस जैसा प्रोग्रेस वाला मुल्क जो है वो अभी तक हमारे एशिया में नहीं है।
बिल्कुल,
जहाँ पर दो बंदे भी हो ना, दो बंदे भी तो वो लाइन बना के खड़े होते हैं।
yes.
मेरी बारी आएगी तो हम अपनी बारी के काम,
मैंने खुद ये देखी है, कतारें उन्होंने बनाई होती हैं। बिल्कुल,
ये मैं आपको बात बता रही हूँ 88-89 की, याद से 25 साल 30 साल पहले की बात है, और अब तो और ईरान जो है वो
ऑर्गेनाइज हो गया है बहुत।
तो, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी,
थैंक यू, थैंक यू।
घर में बैठकर आपको देख
रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
एक कमर्शियल लेते हैं और वापस आते हैं। स्टूडियो में आप कॉल कर सकते हैं 416-6201778। वैसे तो प्रोग्राम खत्म, शाजिया जी खुदा हाफिज। एक दुआ की तरफ जाना चाहती हूँ, क्योंकि प्रोग्राम का एक अगेन, बहुत से लोग आज मैंने जिसका इंटरव्यू किया ना, मैंने लियाकत बलोच साहब का इंटरव्यू किया, और जितने हमारे रिलीजियस पर्सनैलिटीज होती हैं, इसको भी बहुत से लोग माइंड कर लेंगे, तो वो ना चोरी आंख से देखते हैं। तो वो जब बैठे हुए थे, मैं थी साइड पे, जलील रहमान साहब थे, तो वो ऐसे उनकी आंखें लीजिए थी, मैंने कहा शायद नीचे आंख करके बैठे हैं। मुझे लियाकत बलोच वो याद है जो यूनिवर्सिटी पे रूल किया करते थे, पंजाब यूनिवर्सिटी की सड़कों पे और हर तरफ। तो बट नाउ ही इज अ टोटल चेंज्ड मैन, ट्रांसफॉर्म्ड मैन। तो जब मैं आई तो मैं इसी हालत में बैठी हुई थी, यही चादर मेरे ऊपर थी, सर पे ली हुई थी। तो उन्होंने आंख नीचे रखते हुए ना थोड़ी सी स्माइल के साथ मुझे कहने लगे, आपने मेरे प्रोग्राम के लिए दुपट्टा लिया या आप लेती हैं? मैंने कहा जी मैं तो पेंडू सी औरत हूँ, मैं तो हमेशा ही दुपट्टा लेती हूँ, मैं ऐसी हूँ। और इसी हालत में मैं यहाँ के वडेरों को भी मिली हूँ और मैंने खड़े होकर अपने बारे में बताना नहीं चाहती, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने किया उसको लोगों ने एक्नॉलेज भी किया, दैट्स ऑल व्हाट इट इज। तो दिस इज व्हाट आई एम। मगर मैं सिर्फ इतना कहती हूँ कि ये मगरिब का वक्त बड़ा खूबसूरत वक्त होता है दुआओं के लिहाज से, और मैं और आप अल्लाह से मांगते भी रहते हैं, देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे प्यारों को जिंदगियां से तंदुरुस्तियां दे, और अल्लाह तबारक व ताला रिस्क के लिए कभी किसी का मोहताज ना करे। अल्लाह तबारक व ताला मुझे, आपको, हम सबको ऊपर के हाथ में देते हाथ में रखे, आमीन सुमा आमीन। और मेरा आपका लाया अमल जो है ये हमारी जिंदगी का जो मैनुअल ऑफ लाइफ है दैट इज कुरान और हदीस, और कुरान में बार बार अल्लाह ने कहा कि दो दो देने से बढ़ता है, पानी अगर चलता रहे तो पानी चलता रहता है, अगर पानी खड़ा हो जाए तो वो बुसांद वाला पानी हो जाता है, हलाल भी नहीं रहता। तो एक दुआ आपके लिए छोड़ती हूँ, आई होप यू विल लव इट। कर्म मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मैं और आप तो आज निवाला उठा के भी खा सकते हैं, अपने लिए काम भी कर सकते हैं, वो लोग जो आज दुनिया में नहीं है उनको मेरी और आपकी दुआओं की जरूरत है। सबके साथ के लिए मांगते हुए आप मेरे मुजफ्फर को जरूर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दुआ और फिर उसके बाद प्रोग्राम का अगला हिस्सा। I love you all and we thank you very much. Please, आप अपने दोस्त अहबाब से कहें, आप सबको बताएं, स्टूडियो का नंबर 416-620-1778, गिव अस अ कॉल, एवरी कॉल एनी कॉल विल एक्नॉलेज। दुआ सुनिए।
अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, न मांगूंगा तुझसे तो मांगूंगा किससे, तेरा हूँ मैं तुझसे अता मांगता हूँ, करम मांगता मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता सुरूर रखना, बला से हमको सदा दूर रखना, परेशानियां हमको घेरे हुए
परेशानियां को घेरे हुए हैं, परेशानियों से पना मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, जो भटके है उनको हिदायत अता कर, जो मजलूम है उनको ताकत अता कर, मैं सब पे करम एक सा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे ये नफरत की आग न गुलशन जला दे, जो इस आग को मेरे मौला बुझा दे, मैं ऐसे करम की हवा दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, वो बर्बाद घर जो तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, मेरी माँ मेरी बेटिया गहने, सदा उन पे साया तेरा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही तुझसे दुआ मांगता हूँ।
WTOR Youngstown, Toronto now concludes a full day of broadcasting activities. WTOR is owned and operated by Birosh Broadcasting Corporation and operates on an assigned frequency of 770 kHz as authorized by the Federal Communications Commission, Washington, D.C. Do join us again in the morning hours when we resume with the sounds of our world in words and in music.
Yeah.